हाँ जी, आज क्या विचार मन में है, करिए।
कल हमने उस पर बात की थी, कर्तापन, कर्म वासना, अहंकार, ये तीनों चीजों पे जिस व्यक्ति ने अभी ज्यादा आध्यात्मिक काम नहीं किया, उसके लिए डे टू डे लाइफ में इसने किस तरह
कर्तापन, कर्म वासना, कर्म फल द्वंद, कर्म वासना से कर्म होगा, कर्म के बाद उसका फल मिलेगा, वो द्वंद रूप होगा, मन के अनुकूल मन के प्रतिकूल, इसी में हम फंसे रहते हैं। असल में से निकलने का महाराज जी ने तो रास्ता बताया है, पांच नियम दिए हैं उन्होंने, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्स्मरण। तो पांच नियम को यदि अपनाया जाए तो धीरे धीरे सारे रास्ते खुल जाते हैं, भी खुल जाते हैं। समस्या ये होती है कि ये पांचों नियम पालन करने में हम बड़ी ढिलाई बरतते हैं, और ढिलाई बरतने के कारण जो है हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते। और ढिलाई क्यों बरतते हैं? ढिलाई इसलिए बरतते हैं कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती। सारा संसार कर्म कर रहा है और फल के लिए ही जी रहा है, मुझसे कहा जा रहा है तो ये कर्म की वासना है। गीता कह रही है कि कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता कह रही है तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार हो गए, फल में कदापि नहीं। तो मन में प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि भाई कर्म में तो मेरा अधिकार दे दिया भगवान कृष्ण ने, वो कह रहे हैं फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो कर्म तो मैं फल प्राप्ति के लिए ही कर रहा हूं, तो ये मिस्ट्री समझ में नहीं आ क्या चक्कर। असल में जो कर्म फल है वही हमारी डिजायर है। मान लिया मेरे मन में एक कामना है, मैंने एक सुंदर सा मकान बनाना है जिसमें कम से कम फ्लोर एरिया 150 स्क्वायर यार्ड्स होने चाहिए, है कल्पना है। अब आजकल के ज़माने में अच्छी जगह 150 स्क्वायर यार्ड्स का एक मकान तैयार करना है तो उसके लिए ज़मीन खरीदोगे, मकान बनाओगे, उसकी साज सज्जा करोगे, तो पता लगा कि कम से कम आपको 50 लाख रुपए चाहिए अच्छी लोकेशन में बनाने के लिए। मान लिया आपको 50 लाख रुपए चाहिए। अब आपने संकल्प तो तैयार कर लिया, अब 50 लाख चाहिए तो आप देखते हो कि मेरी योग्यता क्या है, मेरा वर्क क्या है, मैं कैसे उसको इकट्ठा कर सकता हूँ पैसे को, नहीं नहीं, और मेरी इच्छा ये पूरी हो जाए, क्योंकि इच्छा पूरी होगी तो मुझे सुखी जीवन, मुझको मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, यही धारणा तो है। तो अब विचार करो, मान लिया उसकी इनकम 40,000 रुपये महीने की है या 50,000 रुपये महीने की है, उसका परिवार भी है, मियाँ बीवी दो बच्चे ही हैं मान लिया, तो वो अपने परिवार को थोड़ा टाइट करके समझने और कुछ अपने इनकम के रिसोर्सेज बढ़ाने की कोशिश करता है। वो तो देखता है काम नहीं बन पाएगा तो कुछ ना कुछ वो रिसोर्सेज बढ़ाने की कोशिश करता है। तो टाइम तो लिमिटेड ही है उसके पास, तो जो टाइम उसका कंफर्ट के लिए था, फैमिली के लिए था, उसको पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट कर देता है। भले उसने 2 घंटे और चलो पैसा कमाया, उसने कहीं ट्यूशन करी या कोई पार्ट टाइम किया या ओवर टाइम किया, क्योंकि उसका जो मन है वो वहीं खड़ा हुआ है कि मैंने 50 लाख का मकान तैयार करना है और ये विद इन मेरी अप्रोच है, मैं कर सकता हूँ इसको, बियॉन्ड कैपेसिटी आदमी सोचता ही नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ। तो वो उसके सारा जो है उसका प्लान करता है पैसा कमाने का, उसके लिए सुविधाएं जुटाने का। तो इस चक्र में क्या होता है कि उसकी जो कंफर्टेबल लाइफ जो व्यतीत कर रहा था इस कल्पना से पहले, वो कंफर्टेबल लाइफ उसकी छिन जाती है। अब एक प्रेशर लेके जीता है, ये प्रेशर तब तक रिलीज नहीं होता उसका जब तक कि उसका मकान बन ना जाए। इस प्रोसेस में 10 साल भी लग सकते हैं, इस प्रोसेस में 5 साल भी लग सकते हैं, और इस प्रोसेस में 1 साल भी लग सकता है। उन्होंने कहा चलो भाई पैसा तो मैं कमा ही लूंगा, लोन ले लेता हूँ, लोन लेके मैं अपना किस्तें चुकाता रहूंगा। 50 लाख का मकान है, कितनी किस्तें बनेंगी? 35,000 रुपये महीने की बनेंगी। उसने सोचा मैं कैसे कैसे कमा सकता हूँ, प्लान कर लिया कुछ किस्त पे, चलो मकान, मतलब मकान उसने ले लिया, उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो सोच रहा है, और नेचुरली टाइट तो शुरू हो गई होगा उसका। तो आप सोचिए कि एक सुख के लिए उसने कितने सुख त्यागे हैं, और परिवार भी उसके लिए यस कर देता है कि भाई हाँ आगे चल के सुख मिलेगा, हम सब कष्ट उठा लेते हैं। और जब तक उस मकान की किस्तें चुक नहीं आती, लोन लिया 15 साल के लिए, उसकी 15 साल की किस्तें चुकी, तब तक आपने टाइट होकर कितने सुख त्याग कर उस एक सुख के लिए आपने तैयारी की, और उसके बाद वो प्राप्त हुआ। लेकिन कहते ना कि जब बहुत ज्यादा टाइट पोजीशन हो तो जान गले में आ जाती है, लेकिन अब कल्पना बना ली तो ये तो करनी। और ये कल्पना छोटी भी बन सकती थी, लेकिन देखा देखी बनती है फिर वो, कि ऐसी कंफर्टेबल लाइफ लोग व्यतीत कर रहे हैं, कम से कम हमारे कंफर्ट का लेवल ये तो होना ही चाहिए। तो इस तरह आदमी एक सुख की कल्पना में जो ऑलरेडी सुख है उसको छोड़ने पड़ते हैं उसको। अब 15 साल हो गए, मान लिया 15 साल तक आपने एक टेंशन में, यानी एक टाइट पोजीशन में आपने अपने जिंदगी के निकाले, और उस सुख की कल्पना में जो 15 साल बाद आपको कंफर्ट जोन में लाएगा। अब इन 15 सालों में क्या क्या परिस्थितियां बदल गई समाज की, क्या क्या परिस्थितियां बदल गई गृहस्थ की, आपको पता ही नहीं। अभी तो मकान का आइटम था, अब पता लगा बच्चे की शादी का आइटम खड़ा हो गया 15 साल में, वो भी उससे बड़ा कम आइटम नहीं है। अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आदमी जो सोचता है तो कहता है वो भी बड़ा बहुत बड़ा आइटम। अब मैं क्या करूं, 15 साल तो मैं पैसा जोड़ ही नहीं सका, वो तो मैंने सब मकान में लगा दिया। तो फिर सोचता है मैं शादी के लिए क्या करूं, फिर परेशान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के आगे ऐसी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज खड़ी हुई हैं, ऐसी ऐसी डिजायर्स खड़ी हुई हैं। आज कुछ है कल कुछ है, आज रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है कल को कुछ है, तो इस मनुष्य इससे उबर ही नहीं पाता। सत्य है कि मनुष्य से उबर नहीं पाता, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी लंबी दौड़ लगाता है। आप देखते नहीं कि किसी की 1 लाख इनकम है तो खुदा चलो मैं 1 लाख महीने की इनकम है, कुछ किस्त निकाल के मैं लोन लेके 1 करोड़ का फ्लैट तो मैं ले सकता हूँ। जो काम आपका 50 लाख में होता है वही काम आपका 1 करोड़ में होता है, जरा सी लोकेलिटी चेंज कर लेते हो बस। आप मकान का स्टैंडर्ड स्टेटस सब वैसे ही रहता है, खाली लोकेलिटी चेंज कर लिया आपने 50 लाख के 1 करोड़ में, तो जरा सी डिजायर आपने शिफ्ट ही तो की है बस, और क्या गया है, जरा सी डिजायर शिफ्ट किया आपने बस, कुछ नहीं। तो आम व्यक्ति जिसकी आध्यात्मिक सोच नहीं है वो इसी तरह समझता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, सैकड़ों आइटम्स आपके होते हैं ऐसी एजुकेशन के मामले में, बच्चे को मैं कौन से स्कूल में एडमिशन कराऊं, समझ नहीं, जैसा मैंने सोच रखा है वैसे स्टैंडर्ड में बच्चा मेरा पढ़ेगा तभी कोई बड़ा ऑफिसर बन सकता है, कल्पना मेरी है वो कल्पना मैंने बच्चे के मन में है, मैं उसको ग्रो कर रहा हूँ, बच्चे के मन में डाल डाल के उस कल्पना को मैं ग्रो कर रहा हूँ, फिर बच्चा भी मेरा वैसे ही सोचने लगता है जैसा मैं चाहता हूँ। तो कल्पना का मेरी विस्तार हो रहा है चारों तरफ, सारा मैं जो फैमिली तैयार कर रहा हूँ, अपना जो सामाजिक जीवन तैयार कर रहा हूँ, सामाजिक रिलेशनशिप तैयार कर रहा हूँ, वो मेरी कल्पना से हो रहा है, लेकिन थोप रहा हूँ मैं दूसरे को, जब फंस जाता हूँ कहता हूँ इसके कारण से हुआ, इसके कारण से हुआ, अपने को बचाना चाहता हूँ। तो इस द्वंद में जिंदगी का लंबा वक्त निकल जाता है, समझ रहे, और यदि कोई इसका गुरु नहीं मिला, रियल गुरु, आजकल के वो गुरु नहीं जिनके करोड़ों शिष्य हैं, आजकल रियल गुरु कोई मिल जाए आपको और उसका ज्ञान मिल जाए, तब जाकर आपकी बुद्धि ये सोचने को मजबूर होती है कि ये जो जीवन का तरीका मैंने सोचा था जीने का, ये तो गलत तरीका था। तो महाराज जी कह रहे हैं प्रेमी पहले तू तो ये सोच तू है कौन। देखो ना कि अल्टीमेटली सोच तो हमारी कहीं से स्टार्ट होगी, जब सोच में ही डिफेक्ट है तो हम प्रिपरेशन क्या करेंगे, और यदि बिना सोचे प्रिपरेशन शुरू भी कर देंगे तो छोड़ देंगे। महाजी ने सादगी की बात तो कही है, उसमें 100 तर्क लगाएंगे और सादगी नहीं अपनाएंगे, समझ ही नहीं आएगा सादगी क्या होती है। कोई सोचेगा शायद सफेद कपड़े पहन लेना सादगी है, कोई सोच लेगा कि कम कीमती कपड़े पहन लेना सादगी है, डिफरेंट अपने मतलब निकाल लेंगे, लेकिन सादगी का रियली क्या पर्पज है वो समझ में नहीं आएगा। जब तक कि आपको अपनी पूरी लाइफ का ह्यूमन पर्पज समझ में ना आए तो सादगी का पर्पज क्या समझ में आएगा। तो कुछ नियम आप केवल इसलिए कि गुरु ने कहा है हमने पालन करते हैं, गुरु आज्ञा पालन करते हैं, इसलिए कर लिए पालन, आपने समझ है नहीं उसकी कुछ भी, तो फिर वो आप कहीं ना कहीं छोड़ बैठते हो उसको, क्योंकि मन में उमंग नहीं आती इसके लिए, उसके लिए सेक्रीफाइस करने की जो है कैपेसिटी आपने डेवलप नहीं होती, क्योंकि समझ ही नहीं आई बात। तो इसीलिए महाराज जी वो आपको समझाना चाह रहे हैं सबसे पहले, ये जब 5 नियम से पहले कुछ समझाना भी तो चाह रहे हो, जिसको महाराज जी कह रहे हैं कि कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। अरे अब सोचता है संसारी आदमी मानुष जन्म का काम ये क्या बात हुई है, हमने तो ये सोचा था कि पढ़ना है मनुष्य जन्म का काम, बढ़िया व्यवसाय बढ़िया सर्विस करनी है मनुष्य जन्म का काम, बढ़िया शादी करनी है मनुष्य जन्म का काम, फिर बच्चे अच्छे बनाने हैं ये है मनुष्य जन्म का काम, माता पिता हैं तो उनकी केयर करनी है ये है मनुष्य जन्म का काम, मर जाना है, इससे हटके भी कुछ सोचा आदमी क्या। गुरु तो कुछ दूसरी बात बता रहा है, ये क्या बता रहा है गुरु, वो तो कह रहा है तू कहां से आया है ए नर, तू कहां से आया है इसके बारे में सोच। मेरे घर में 4 मेंबर्स होते हैं, मेरे ही 2 बच्चे हैं, बिल्कुल अलग अलग स्वभाव के होते हैं, 4 मेंबर है, चारों के स्वभाव अलग अलग है, और ये स्वभाव में परिवर्तन बचपन से ही होता है, अभी इसने कुछ भी कर्म नहीं किया। जब बच्चा पैदा होता है वो महीने भर का ही होगा, आपको पता लग जाएगा इसका कैसा स्वभाव है, 1 महीने के बच्चे का ही आपको स्वभाव पता लग जाएगा कि ये कैसा स्वभाव है, ये सीधा साधा निकलेगा या चंचल निकलेगा, समझे नहीं, आपके स्वभाव के बारे में काफी जानकारी सुन जाएगी, और हर साल जो बढ़ता रहेगा वो आपको पक्की जानकारी मिलती रहेगी, ये प्रेम करने वाला होगा या झगड़ा करने वाला होगा सब पता लग जाएगा आपको। तो ये बालक घर में आया है, ये कहां से आया, कहां से सीख के आया है, ये स्वभाव तो उसे कहते हैं ना कि एक कर्म को बार बार रिपीट करो तो वो आपकी आदत बन जाती है, जो आदतों का समूह है उसका नाम है स्वभाव, वो आदत मेरी बन गई, स्व माने अपनी, वो भाव या वो आदत वो विचार मेरा परिपक्व हो गया, मेरा स्वभाव बन गया। तो हर बालक जब स्वभाव लेकर पैदा हो रहा है तो इसका मतलब स्वभाव पीछे से आया ना कहीं से, स्वभाव तो रिपीटेडली कर्म करने के बाद बनता है ना, वो लेकर आया है तो कहां से लेकर आया स्वभाव। तो उसके लिए वाणी कह रही है कि नहीं तो कहां से आया है ये विचार कर, तब ये मनुष्य फिर अध्यात्म विद्या का अध्ययन करता है या सत्संग श्रवण करता है, वहां इसको पता लगता है कि अरे आज जो पैदा हुआ हूं मैं नए शरीर में या नए शरीर लेके जो संसार में मैं प्रकट हुआ हूं, मेरा इसी प्रकार का जीवन पहले भी बीत चुका है, मेरा इस प्रकार का जीवन पहले भी बीत चुका है, और इसके लिए प्रमाण देखता है, शास्त्रों में प्रमाण है, मान लिया उसकी कृष्ण पर श्रद्धा है गीता पर श्रद्धा है, तो देखता है कि यार जब गीता सुनता है या पढ़ता है तो कहता है वहां भी तो लिखा हुआ है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर लेता है उसी प्रकार जीव पुरानी देह त्याग कर नई धारण कर लेता है, और इतना ही नहीं उसका सिद्धांत भी लिखा हुआ है कैसे धारण करता है वो, तो वहां कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, कहते जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ ये जीव देह का त्याग करता है, उसी उसी भाव के अनुसार इसको अगली देह अगली परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। इसका मतलब मैंने वर्तमान जो माता पिता तैयार किए हैं, वर्तमान जो मैंने परिवेश चारों तरफ का वातावरण तैयार किया है जिसमें मैं पैदा हुआ हूं, ये मैंने तैयार किया है। मैं सारी जिंदगी दूसरे को कोस रहता हूं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा, मुझे पता ही नहीं कि मैंने तैयार किया खुद ही। मुझको यदि राक्षस माता पिता मिल गए, राक्षस पति मिल गया या राक्षस पत्नी मिल गई, तो ये मैंने तैयार किया है, इसका कारणकर्ता मैं हूं, समाज को दोष मत दो भैया। अध्यात्म तो ये कहता है। तो फिर ये क्या, अब ये समझना चाहता है कि ये कारण कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है इसके पीछे। तब पता लगता है कि अरे मन के अंदर जो इच्छा थी, इच्छा के वशीभूत होके तो मैंने पाप किए थे, इस जन्म में भी कर रहा हूं कुछ गलतियां, मुझे मालूम है, मेरे बच्चे भी गलतियां कर रहे हैं मन के इच्छा के वशीभूत होकर। जो चीज नहीं खानी चाहिए इच्छा कर रही है खा रहे हैं, माता पिता को भी मालूम है कि इसका पेट खराब हो जाएगा, उसको खुद भी मालूम है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, मतलब बाकी जो है लोग उसको गाइड करते हैं कि ये चीज जो है वो नुकसानदायक है, भविष्य में ये सेहत को बिगाड़ देगी, लेकिन खाता है इच्छा के वशीभूत होकर। सभी कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो लोगों से लोक व्यवहार के मामले में हो, चाहे पैसे की कमाई में हो, गलतियां करते हैं, जानते हुए गलतियां करते हैं, पता है ये गलत है। तो अब बताइए मैं अपनी आदतों का, अपनी इच्छाओं का कितना गुलाम हूं कि मुझे पता है, सामाजिक दृष्टि से भी पता है ये गलत है, फिर भी मैं करता हूं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका पता ही नहीं है आपको, आप गलती करते रहते, पता ही नहीं आपको गलती करते रहते, क्योंकि अध्यात्म विद्या पढ़ी होती तब आपको पता लगता कि सारी गलतियों का कि क्या गलत है क्या सही है, इस मनुष्य जन्म में क्या कैसा जीवन गलत है और कैसा जीवन सही है। तो बिना अध्यात्म विद्या पढ़े तो आदमी को पता ही नहीं ले सकता। सामाजिक दृष्टि से जो गलतियां करता है उसका पता होता है, जैसे कि कानून समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध कोई काम करते हैं आपको पता भी, हमारे देश का संविधान तो ये नहीं कह रहा लेकिन मैं गलती कर रहा हूं, तो सामाजिक दृष्टि से कुछ गलतियों का पता होता है, लेकिन मेरा जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो शास्त्र है, मेरे जीवन का जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो गीता है, वो तो समता विलास है, उसका मार्गदृष्टा गुरु है या अवतार है, जिसने भी शास्त्र की रचना की, जिसने उसने वचन कहे। तो इसीलिए आप देखिए कि मैं मेरी सारी जिंदगी सारा जन्म गलतियां करते 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 व्यतीत हो जाता है। तो ये जो मैंने जीवन भर गलतियां करता रहा, इसका जो प्रिंट था वो मेरे मन में तैयार हो गया, इसका जो ट्रैक था, इसके जो इंप्रेशंस थे, इसको संस्कार कहते हैं हम लोग, वो मेरे मन में सब इकट्ठे हो गए। अब ये संस्कार सारे और जो गलत कर्म किए उनके फल वो सब उसमें तैयार है। अब यही मन ये जीव अपने संग लेकर इस देह का त्याग करता है। तो उसी को गीता कह रही है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, अंत में इस कलेवर अर्थात शरीर का त्याग करता है जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए, अर्थात जैसा मन तैयार किया है उसने उस मन के अनुसार वो नई देह उसको प्राप्त होती है और नया संसार उसको प्राप्त होता है जहां ये देह कर्म करता है। तो सारे आप देखते हो कि आपको जो आपने गलतियां नहीं की, जो मनते कि आपने गलतियां नहीं की उसका भी दंड आपको भोगना पड़ जाता है। एक व्यक्ति ने कत्ल नहीं किया उसको कोर्ट फांसी की सजा दे देता है, उसने वास्तव में कत्ल नहीं किया, कोर्ट उसको फांसी की सजा सुना देता है, और जिसने कत्ल किया कोर्ट उसको छोड़ देता है। आपको पता है ये बात, फिर आपका मन कहता है कि इसके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। यदि अध्यात्म के एंगल से देखो तो उसके साथ केवल न्याय हो रहा है, उसके साथ केवल न्याय हो रहा है, अन्याय हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए गुरु को बात कहोगे, गुरु कहता है तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है तू उसको ईश्वर हुक्म में देखना सीख। यदि गुरु के पास बैठोगे वो ये कहेगा कि तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको तू ईश्वर हुक्म में देखना सीख। क्यों ईश्वर हुक्म में देखना सीख? क्योंकि तेरे साथ केवल न्याय होता है, अन्याय होता ही नहीं है। अब बताइए कि ये तो अध्यात्म विद्या का न्याय है या ज्ञान है, और एक संसार का ज्ञान है, इन दोनों में कंट्राडिक्शन है या नहीं? तो यदि आपने ये विज्ञान नहीं सीखा तो इस किस नतीजे पर पहुंचोगे? सारी जिंदगी शास्त्रों के कोसते रहोगे, पता नहीं क्या कहते रहते हैं इन लोग, हमारी तो समझ में नहीं आती क्या कहते हैं शास्त्र। तो ना गीता समझ में आएगी, ना कभी कोई गुरुवाणी समझ में आएगी, ना कोई सत्संग समझ में आएगा। यदि हम संसारी हैं, संसारी तरीके से समझना चाहते हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम पांच नियम का पालन क्यों करने लगे थे? तो इसका आधार अध्यात्म ही है। जब तक उस आधार को आप नहीं पकड़ोगे, उस आधार को नहीं सीखोगे, तो ये पांच नियम का पालन आप नहीं कर सकते। आप करते भी रहोगे तो लेकिन जियोगे संसारी तरीके से। जैसे महाराज जी के पास कुछ शिष्य आए, महाराज से प्रण किया उन्होंने, आम साधारण लोग थे। महाराज जी मैं मीट नहीं खाऊंगा, आज से मैं जो है वो जुआ नहीं खेलूंगा, जो भी गलत कर्म करते थे वो, आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, वायदा कर लेते थे महाराज साहब। और जब महाराज जी पार्टीशन के बाद इंडिया की तरफ आ गए, वो भी बेचारे शिष्य लुटपिट के वहां से पार्टीशन के बाद इधर आ गए, यहाँ आके किसी का बिजनेस चल गया दोबारा मेहनत करके, फिर उन्होंने वो सब शुरू कर दिए। तो महाजी बोले एक दिन, वो प्रेमियों इससे अच्छे स्वभाव तो तुम्हारे वहां पर थे, अब तुमने फिर वही गलतियां शुरू कर दी। तो एक पूर्ण गुरु भी मिला, उसका मार्गदर्शन भी मिला, फिर जो डायरेक्ट डिसाइपल है उसका, गुरु का, एक ब्रह्म ऋषि का डायरेक्ट डिसाइपल है, वो ऐसी गलतियां कैसे कर सकता है? आप सोचो वो ऐसी गलतियां कैसे करता? मैं होता तो मैं तो कभी नहीं करता। एक कारण क्या उसके पीछे? कारण क्या है? उसके पीछे विचार नहीं खड़ा हुआ उसका, केवल गुरु आज्ञा पालन कर ली उसने, उसके पीछे उसका कोई विचार नहीं खड़ा हुआ। तो विचार यदि खड़ा होता कि जिस प्रकार का आहार तुम ग्रहण करते हो उसी प्रकार की बुद्धि बन जाती है, तब वो नहीं करता, कहेगा बुद्धि तो मुझे शुद्ध चाहिए। क्योंकि आहार का प्रभाव सीधा सीधा मन पे पड़ता है, तमोगुणी, इसको ये तो सारा तमोगुणी आहार है ना। तम माने होता है अंधेरा, जो बुद्धि में अंधेरा पैदा कर दे, ठीक गलत का निर्णय ही बुद्धि करने में असमर्थ हो जाए, ऐसी जो बुद्धि है उसको तमोगुणी बुद्धि कहते हैं। तो तमोगुणी आहार खाओगे तो तमोगुणी स्वभाव तुम्हारा बनेगा, वैसे ही विचार, वैसे ही इच्छाएं उठेंगी, पाप वृत्ति बन जाएगी ऑटोमेटिकली। आहार बदल लीजिए आप ना, पाप वृत्ति बन जाएगी, क्योंकि सारी प्रकृति स्वभाव के वशीभूत है। स्वभाव तीन प्रकार का होता है, जिसको तीन गुण कहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण है त्याग वृत्ति, जो लोग सेवा करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, है नहीं, और जिनके अंदर विनम्रता होती है, सारे जो गुण हैं ये सतोगुण ही। और जो भोग विलास है, खूब पैसा कमाते हैं, खूब अपने भोगते हैं, खूब सामान इकट्ठा करते हैं, ये रजोगुण है। और जो पाप करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचता है जिनके कर्मों से, वो तमोगुण है। जिनका आहार भी अशुद्ध, बातचीत भी अशुद्ध, कमाई भी अशुद्ध, हर चीज अशुद्ध है उनकी, वो तमोगुण। तो पूरी प्रकृति में ये तीन गुण ऑपरेट कर रहे हैं, मेरे अंदर भी है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर तीनों गुण ना हो, मेरे अंदर भी है तीनों गुण। बस यह, यदि आदमी अलर्ट है तो वो इस सतोगुण की कमाई करता है, इस रजोगुण और तमोगुण को धीरे धीरे इसकी वाशिंग करता है। ये अध्यात्म मार्ग है। सतोगुण को की वृद्धि करना, रजोगुण तमोगुण को कमजोर करना, इसका नाम है अध्यात्म मार्ग। संसार में सतोगुण नाम की वस्तु होती नहीं। सतोगुण जीव वही हो सकता है जिसका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, जो ईश्वर को जानना चाहता है। सतोगुण की जरूरत उसी को है, क्योंकि ईश्वर है निर्गुण, प्रकृति से ऊपर है, प्रकृति का मालिक है वो। प्रकृति में तीन गुण है, तो मैंने निर्गुण बनना है, अर्थात ईश्वर का दर्शन करना है, ईश्वर प्राप्त करना है, तो निर्गुण सतोगुणी जीव ही निर्गुण बन सकता है। सतोगुणी जीव ही निर्गुण बन सकता है, तो सतोगुणी तो बनना ही पड़ेगा मुझे। तो अब बताइए, जिसने अध्यात्म विद्या सीखी है, उस विज्ञान को सीखा है, तो उसको पता है ना मुझे क्या नीड है, मैंने क्या बनने जा रहा हूं, क्या चाह रहा हूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब पता है उसको। इसलिए वो लापरवाह नहीं हो सकता, वो लापरवाह नहीं हो सकता। जिसको कुछ पता नहीं है, किसी कहने से कर दिया उसने, कभी किसी कहने से छोड़ भी देगा। तो मेन कारण ये है कि ये जो जीव के अंदर कर्तापन है, ओरिजिनल चीज कर्म, इसके कर्तापन से जो कर्म वासना पैदा हो रही है, कर्म करने की इच्छा पैदा हो रही है, तो कर्म करने की जो इच्छा पैदा हो रही है, वो जो उसका कर्म का जो भोग है या जो कर्म का फल है, उसके कारण पैदा हो रही है। एक निश्चित चीज वो कुछ चाहता है, कुछ फल चाहता है, उसके लिए वो कर्म करने की उसके अंदर इच्छा पैदा हो रही है। तो सारे के सारे कर्म उसके तीन गुणों के अंतर्गत ही होंगे। कर्म करने की इच्छा तीन गुणों के अंतर्गत ही होती है, तीन गुणों से ऊपर कर्म करने की इच्छा नहीं होती है। तो हर जीव कर्म करते करते एक दिन ऐसा आता है कि परेशान हो जाता है, इस कर्म से कब छुटकारा मिलेगा मुझे। सारी जिंदगी करते करते हो गया, है नहीं, इससे मुझे छुटकारा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आदमी जब कर्म से ही परेशान होता है, या यूं कहिए कि संसार उसको कई बार क्लेश युक्त नजर आता है, लाइफ में फेल हो गया, वो सक्सेसफुल भी हो गया तो अपने ही उसका विरोध करने लगे, कहीं ना कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि उसको संसार क्लेश युक्त नजर आता है, तब जाके वो सोचने को मजबूर होता है कि इस क्लेश से मुझे छुटकारा क्या मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति यदि भाग्यवश गुरु के पास पहुंच गया, या उसको ऐसी संगत मिल गई जहां पूर्ण गुरु का ज्ञान उसको समझने को मिल गया, तब वो व्यक्ति बड़े शौक से नहीं उस विज्ञान को समझकर उस पर चलने की कोशिश करता है। कहता है, अरे सारी जिंदगी में भटकता रहा, कितने मानसिक क्लेश मैंने झेले हैं, अब मुझे रास्ता पता लगा कि मैं इसका इस मानसिक क्लेश से मुक्त भी हो सकता हूं, इस मानसिक क्लेश से मैं मुक्त भी हो सकता हूं। तब जाके ये विज्ञान वो सीखता है। जब विज्ञान सीखता है तो सबसे पहले जो गुरु है या शास्त्र है वो आपको ये समझाता है कि तुम जो अपने आप को समझ रहे हो, देह करके देख रहे हो, देह मर गई जिसका मतलब सारी लीला खत्म हो गई, मैं ही मर जाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा। जो देह करके अपने आप को देख रहा है उसके बारे में गुरु सबसे पहले बताता है, तू जीव है और तेरा जीवन इस देह के साथ खत्म नहीं होता, मात्र देह का परिवर्तन है ये। मृत्यु क्या है? ये पुरानी देह का जाना, नई देह का मिल जाना, बस इतना है। जिसको गीता साफ करिए कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर लेता है, इसी प्रकार पुरानी देह त्याग कर नई धारण कर लेता है। इतनी सिंपल सी बात है बस, और बीच में टाइम गैप भी कुछ भी नहीं है, बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। उपनिषद में आया है कि जिस प्रकार वहां एक कैटरपिलर का एग्जाम्पल आता है, जिसको वो देखा ना, एक कीड़ा होता है रोए वाला, जो चलता है नहीं, अंगों को सिकोड़ता है, फिर फैलाता है, फिर ऐसे चलता है ना। तो वहां तृण जलायु का उसका वर्णन आता है, वहां कहते हैं कि जिस प्रकार घास पे चलने वाला कीड़ा एक तिनके की नोक तक जाता है, फिर अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, फिर दूसरे तिनके पर अपना मुंह रखता है, फिर सारे अंगों को उस पर उतार लेता है। कहते इसी प्रकार मृत्यु के वक्त ये जीव अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। अंग कौन से हैं इसकी? इसकी इंद्रियां और इसका मन है, ये इसके अंग है। मन इंद्रियों को ये जीव अपने अंदर ही समेट लेता है, फिर जिस नए शरीर में इसने जाना है, उस नए शरीर में ये अपने मन इंद्रियों को एक्टिव कर लेता है। तो अब बताइए कि जिस प्रकार कीड़ा का पुराना तिनका छोड़ना और नए में प्रवेश करना में टाइम गैप है कोई? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो महाजी से प्रश्न किया गया, महाजी क्या मरने के बाद जीव किसी और रूप में रहता है या तुरंत जन्म मिल जाता है? तब महाराज जी ने उस समय जोंक चल रही थी उनके आगे, तो जोंक चांस की बात थी, जोंक चल रही थी। उन्होंने कहा देखो प्रेमी ये जोंक चल रही ना, तो जोंक की गति कैसे होती है, वो यूं चलती है, यूं फिर पूरा उठाएगी पूंछ यहां रखेगी, फिर मुंह उठा के ऐसे चलती है। तो बोले जिस प्रकार जोंक अगला मुंह जब जमा लेती है तब पीछे के अंग उठाती है। अब देखो मैंने जब पढ़ा ये, तो मैं देखो महाराज जी ने जो एग्जाम्पल दिया था ये वही एग्जाम्पल है जो उपनिषद में लिखा हुआ है। यहां महाराज जी जोंक कह रहे हैं, वहां पर वो कैटरपिलर कह रहे हैं, बस अंतर इतना। वैदिक काल का ऋषि कह रहा है ये बात के लिए, और महाराज जी आधुनिक काल में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बीच में टाइम गैप है ही नहीं, डेथ नाम की वस्तु को ही नहीं है, मैं कितना घबराता हूं डेथ से। तो इस अज्ञानता को लेकर मैं जी रहा हूं कि मैं देह हूं, तो कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। जिसकी मौत है नहीं वो अपनी मौत समझ रहा। तो जब ये अध्यात्म विद्या पढ़ता है तब इसकी आंखें खुलती है, मैं किस कूड़े में पड़ा रहा, इतना लंबा जन्म मैंने बिता दिया, सारा कूड़ा करकट ही था, संसार था क्या ये? असली मेरा ज्ञान तो असली ये था, मुझे अपने बारे में पता ही कुछ नहीं था। किसी ने, किसी प्रोफेसर ने, किसी यूनिवर्सिटी ने, मैं क्या हूं, किसी ने पढ़ाया नहीं मुझे। अब गुरु पढ़ा रहा है कि तू कौन है, क्या तेरी इंद्रियां हैं, क्या तेरा मन है, क्या तेरा पुनर्जन्म है, क्या तेरी मृत्यु है, वो सारा विज्ञान पढ़ा रहा है। और ये विज्ञान कोई आज नहीं पढ़ाया जा रहा, वैदिक काल से चलाया एग्जैक्ट विज्ञान है बिल्कुल। साइंस के लॉ तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा लॉ है आज तक चेंज नहीं हुआ, ये इसीलिए इसको इटर्नल लॉ कहा जाता है, इटर्नल लॉ है। तो हर ऋषि जो हुआ, बड़े बड़े काबिल ऋषि हुए, बड़े बड़े काबिल ऋषि हुए, पढ़े लिखे भी तो, जगत गुरु शंकराचार्य कितने पढ़े लिखे थे, हमारे प्रोफेसर सोमराज गुप्ता तो कितने पढ़े लिखे आदमी, रचना तो पुस्तकों की उन्होंने भी की, कमेंट्री तो उन्होंने भाष्य लिखे हैं, बड़े एग्जैक्ट भाष्य लिखे हैं। तो संसारी दृष्टि से पढ़े लिखे लोग भी हों, लेकिन जिन्होंने अध्यात्म की पढ़ाई की है उन्होंने तो इसी को स्वीकार किया, जो संसार की विद्या थी उन्होंने नेग्लेक्ट किया, इसका क्या महत्व है, इस विद्या के आगे इसका क्या महत्व है। ये तो संसार की विद्या में जितना ज्यादा आदमी फंसेगा उतना ज्यादा परेशान होना है, जितना ज्यादा फंसेगा उतना ज्यादा परेशान होगा। तो इसीलिए जो बुद्धिमान भी थे उन्होंने जानकर सिंपल लाइफ अडॉप्ट की, कमा सकते थे वो, कमाने की कोशिश ही नहीं करी, इतना ही कमाई करी जितने में उनका नीड्स लाइफ की पूरी हो जाती है बस, क्योंकि पर्पस को समझ आ गया, लाइफ का पर्पस क्या, मैंने उसके लिए जीना है पर्पस के लिए, या परेशान होने के लिए जीना मैंने। तो जब ये विद्या उसके आगे खुलती है, अध्यात्म का ज्ञान होता है, तब उसको होश आती है, अरे मैं जीव हूं। जीव उसे कहते हैं जो इस देह के अंदर जिंदा वस्तु है, जिंदा कैसे कहते हैं, जिसके अंदर होश है, जो समझता है, जो जानता है, जानने वाले को जीव कहते हैं। मेरा हाथ जानता है किस चीज को, मैं जानता हूं हाथ में क्या है, ये कैसा है, ये कुछ नहीं जानता। मेरी इंद्रिय जानती है, मेरी आंख जानती है किसी को, आंख तो नहीं जानती, आंख के द्वारा मैं जानता हूं, आंख जिसको देख रही है मैं जानता हूं मैं क्या देख रहा हूं, आंख तो नहीं जानती। तो मेरी देह तो डेड है, मेरी इंद्रियां भी डेड है, और मन जानता है किस चीज को, मैं जानता हूं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे मन में क्या इच्छा हो रही है, मैं जानता हूं कि मेरे मन में क्या बेचैनी हो रही है, मन जानता है क्या, तो नहीं जानता। तो मन भी तेरा जड़ है, जिसके लिए तू जी रहा है, जिसके लिए तू जी रहा है वो जड़ है, और जिन इंद्रियों से उपभोग कर रहा है संसार का वो भी जड़ है, जिस देह से कर्म कर रहा है वो भी जड़ है, और जिस संसार में कर्म कर रहा है वो संसार भी जड़ है, और तू चेतन है, तेरे अंदर होश है, तेरे अंदर कॉन्शियसनेस है। तो ये बात समझ में नहीं आई कि जड़ और चेतन का मेल कैसे हो सकता है, जड़ और चेतन का कोई मेल हो सकता है क्या, जो चेतन है वो जड़ का मालिक तो बन सकता है, वो जड़ कभी नहीं हो सकता। इसीलिए इस देह में रहते हुए भी मैं तीन काल इस देह से अलग हूं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं आता मेरे जीवन में कि मैं अपने आप को देह से अलग करके खड़ा कर लूं और देखूं ये देह पड़ी है मेरी, ये मैं खड़ा हुआ हूं, ऐसा वक्त नहीं आता। इसलिए निश्चय नहीं हो पाता कि मैं देह से अलग हूं, मेरा अस्तित्व देह से अलग है या देह ही मेरा अस्तित्व है, इसका निर्णय मेरा नहीं हो पाता। तो इसीलिए इसमें वक्त लगता है, इस ज्ञान को सीखने में वक्त लगता है। कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जन्म से ही ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, जन्म से उन्हें ईश्वर की बातें अच्छी लगती हैं, सत्संग अच्छा लगता है, ईश्वर की किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं, उससे पता रहता है ये पूर्व जन्म में कुछ सतगुणी कर्म करके आया है, कि सत के प्रति इसके मन में प्रीति है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आगे बढ़ना बड़ा आसान हो जाता है, पहले से श्रद्धा है उसके अंदर। मैंने जब 19 की एज थी मेरी, जब मैंने गीता मेरे हाथ लगी पहली बार, मैंने शक्ल भी नहीं देखी थी गीता की, ना कभी गीता के बारे में कोई प्रवचन सुना था। समर वेकेशन थी, वो पिताजी किताब रखी थी, मेरे हाथ लग गई, नाम जरूर सुन रखा था गीता का, तो मन में एक विचार आया छुट्टियां हैं, गीता बड़ी अच्छी पुस्तक है, नाम है इसका, चलो आज पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है इसमें। चांस की बात थी, उसका जो भाष्य था हिंदी में भाष्य था, ओरिजिनल संस्कृत तो लिखी थी, उसके मीनिंग भी लिखे थे, लेकिन भाष्य भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। तो भाष्य पढ़ के जब दूसरा अध्याय खत्म हुआ मेरा, तो वहां से एक विचार उस भाष्य में पढ़ने को मिला कि इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य ईश्वर को जानना है, यह मनुष्य जन्म ईश्वर को जानने के लिए मिला है। तो मन में विचार आया, अरे इसका कुछ नहीं पता था, कोई सत्संग जिंदगी में सुनाया नहीं कभी, पता ही कुछ नहीं था। देखिए ये पता नहीं कहां से बुद्धि ने पकड़ ली थी, अच्छा इस मनुष्य का काम ईश्वर को जानना है, मैं ये काम जिंदगी में जरूर करूंगा। अब आप देखिए, पता नहीं कितने लोग सत्संग सुनते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, मैंने तो सुना नहीं, ऐसा निर्णय किसी का हो जाता है। लेकिन मेरा निर्णय हो गया, सेकेंड लेसन पढ़ने के बाद ही मेरा निर्णय हो गया कि मैंने ये काम जिंदगी में जरूर करना, ना मेरा कोई आश्रम से संबंध, ना मेरा कोई गुरु से संबंध, ना मैं कभी सत्संग सुनने वाला, ना आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने वाला। पहली बार किताब हाथ में उठाई, नहीं वो गीता हाथ में आ गई, और पढ़ने में उसका एक्सप्लेन एक वो भी मिल गया कि भाई इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य ईश्वर को जानना है। मन ने तुरंत निर्णय कर लिया ये काम मैं जिंदगी में जरूर करूंगा। 66 की बात है, 66 से लेकर आज तक मैंने आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं छोड़ी, कोई महीना कोई साल ऐसा नहीं निकला मैंने आध्यात्मिक पढ़ाई ना की। अगर ये 50 साल हो गए मुझे आध्यात्मिक पढ़ाई करते हुए, तो मन के अंदर कितना चाव बढ़ गया इस अध्यात्म, कितना रस दिया इसने। शायद उपन्यास पढ़ के पिक्चरें देख के लोगों को वो रस नहीं मिलता जो मुझे अध्यात्म की पढ़ाई करने में मिला, तो यही कारण है कि वो मेरे जीवन में भी आ गया, वो अध्यात्म जीवन में भी आ गया। तो मैं भी तो स्टूडेंट था, 19 साल का स्टूडेंट होता है, कितनी वासनाएं फैली होती है सब सब जानते हैं। तो ये कैसे हो गया ये काम, मैं सोचता हूं कैसे हो गया, सीधी सी बात, पूर्व जन्म में कुछ संस्कार बने होंगे, ईश्वर ने वो मौका दे दिया। देखो ये मौका तो ईश्वर देता है, इसी का नाम प्रारब्ध है। आपके पास्ट कर्मों के अनुसार ईश्वर आपको मौके देता है, आपके प्रारब्ध के अनुसार वो मौके ही आपको आगे ले जाते हैं। ये मौका मिल गया, शास्त्र मेरे आगे आ गया, ओरिजिनल शास्त्र आ गया। और वो राम गोपाल मोहता था, कोई बॉम्बे के थे, उनका भाष्य लिखा हुआ था, 1935 का पब्लिकेशन था वो, समझे ना, बड़ा अच्छा भाष्य। वो गीता आज भी रखी है मेरे पास, वो गीता आज भी मेरे पास रखी है, गीता का व्यवहार दर्शन नाम है उसका। जिंदगी का नक्शा ही बदल गया। मेरे जो संगी साथी थे, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, यानी मेरे जो रिश्ते सारे रिश्तेदार थे, मैं आज यदि पास्ट देखता हूँ खड़ा होकर, मैं कहता हूँ कि जितना भी थे वो 100-200 लोग का जो ग्रुप था, अपनी लाइफ देखता हूँ, इंटरनल लाइफ, बाहर की नकल की बात नहीं करता, इंटरनल लाइफ देखता हूँ, मैं उन सबसे बेटर हूँ। कोई किसी काम काम से परेशान है, कोई किसी कारण से परेशान है, कोई किसी कारण से परेशान है, समझ नहीं। और ये भी देखता हूँ कि जितने भी मुझे जानते हैं आज भी वो यही कहते हैं मेरा बचपन का नाम शिवर ही था। कहते हैं शिवरी तुम तो निकल गए, हम फंसे रह गए। अब वो ये पछताते अंदर से, मैंने कि मैंने तो कुछ बड़ा काम किया ही नहीं, साधारण लाइफ व्यतीत करी, नहीं जस्ट नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लाइफ जो होती है, लेकिन दिल मेरा जरूर ईश्वर की तरफ लग रहा, उधर की खोज मेरी जारी रही, समझे नहीं, उसके लिए मैंने गुरु की बात मानी। तो आज इतनी लाइफ बीतने के बाद मेरे अंदर किसी भी प्रकार की निराशा नहीं, और वो निराशा लेकर जी रहे, कितने उसमें से संसार से विदा हो गए, कितने आज भी निराशा लेकर जी रहे। तो मैं जब पास्ट देखता हूं, उन लोगों को उनकी लाइफ देखता हूं, तो ये बात मेरी समझ में आती है कि इस मार्ग पर जो चल पड़ा, सतमार्ग पर, जिसको अध्यात्म मार्ग कहते हैं या ईश्वर का मार्ग कहते हैं, ये महान भाग्यशाली मनुष्य है, सारे संसार के मनुष्यों से श्रेष्ठ मनुष्य है, सारे संसार के मनुष्यों से भाग्यशाली है। संसार के मनुष्यों से मतलब मेरा मतलब है जो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत नहीं करते, उनके मुकाबले में चाहे इसकी जेब में महीने में 3,000 रुपये आते हों, लेकिन अपनी रोटी खा लेता है, ईश्वर की भक्ति कर लेता है, ये ज्यादा चैन से जीता है। लेकिन ये चीज तभी बनती है जब अध्यात्म की समझ हो, नहीं तो आदमी परेशान हो जाएगा, यहां भी परेशान हो जाएगा, यहां भी परेशान होने ही होने परेशान, अज्ञानता में तो यहां भी परेशान होगा। तो इसीलिए ये निर्णय होना चाहिए, पूरी साइंस का पता होना चाहिए। तो इसलिए वाणी कह रही है कि कहां से आया कहां नर जाए, ए नर ए जीव तू कहां से आया, जरा विचार कर, तू स्वभाव लेकर पैदा हुआ है और ये स्वभाव तूने बनाया है खुद, तो बनाया है तो तेरा शरीर पहले भी तो रहा होगा, अरे कर्म तो शरीर से ही करेगा या बिना शरीर के कर्म करेगा, जब कर्म रिपीटेडली करेगा तो वो तेरा स्वभाव में प्रवेश कर जाता है, तो स्वभाव तू लेके आया है इसका अंदर पहले भी तेरा शरीर था, अब कहां नर जाए, अब इस शरीर की डेथ के बाद तू कहां चला जाएगा, फिर नए शरीर में प्रवेश करेगा, तू नया शरीर तू तैयार करेगा, तो ऐसा स्वभाव क्यों नहीं बनाता कि बचपन से अच्छा स्वभाव हो, शांत प्रकृति हो, मन में सेवा भाव हो, लोगों से लेने की भावना ना हो, लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो, प्रभु की पूजा करने का मन करे तेरा, संसार के भोग विलास करने का मन ना करे तेरा, प्रभु की पूजा करने में मन लगेगा तो कितनी शांति मिलेगी तुझे, और भोग विलास करने में मन लगाएगा तो कितने तू रोग इकट्ठे कर लेगा, कितने मानसिक क्लेश इकट्ठे कर लेगा, और कितने लोगों से दुश्मनी पाल लेगा तू, क्योंकि सबको ये देखेगा, अच्छा माता पिता का मेरे प्रति क्या कर्तव्य बनता है, माँ को शिकायत करेगा, पिता को शिकायत करेगा, तूने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, शादी होगी तो पत्नी को परेशान करेगा, पतिव्रत धर्म तेरा धर्म बनता है कि पतिव्रत धर्म का पालन करना, तू मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती, मेरा भी कोई धर्म बनता है, उसकी तो गिनती कोई नहीं। तो स्वार्थी जीवन ऐसा ही होता है कि सबका धर्म पता है कि इसका धर्म क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है, अपना कुछ नहीं पता, मेरा भी कोई धर्म बनता है, मेरी भी कोई ड्यूटी है। तो परमार्थ नहीं है तो स्वार्थ का जीवन है, सीधी सी बात है। आप कहां कहां गलतियां कर रहे हो, कहां कहां फंसे हो, आपको पता नहीं इस बात का। कुछ बड़े अच्छे लोग होते ना, मतलब कि ईमानदार भी होते हैं, बेईमानी भी नहीं करते, किसी को कष्ट देना भी नहीं चाहते, फिर भी गलतियां कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं इस बात का, क्योंकि ईश्वर छोड़कर, ईश्वर का भक्ति छोड़कर जो कुछ भी मनुष्य का कर्म और सोच है वो 5 विकार के अंतर्गत आती है, जिसको महाजी कह रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 100% आपकी सारे कर्म और सारी सोच इस 5 विकार के अंतर्गत आती है। इसीलिए मां कहते हैं कि ईश्वर का मार्ग छोड़कर जो मनुष्य सांसारिक जीवन व्यतीत करता है उसका निरंतर पतन होता है। और मैं जो तुलना करता हूं, मैं लोगों से श्रेष्ठ हूं, ये बस ऐसी तुलना है, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। बड़े चोर को देख के मैं कह देता हूं मैं तो भैया 100 रुपये चोरी कर रहा हूं, ये तो 100 लाख चोरी कर रहा है, हूं मैं चोरी लेकिन मैं छोटा चोर हूं बस। ये तो संसार में कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, सब पतन के रास्ते पर जा रहे हैं, समझ नहीं। केवल उत्थान के रास्ते वो जा रहा है जिसने ईश्वर विज्ञान को समझा है और ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है। नहीं तो ये वाणी ये बात क्यों कहती कि बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सुख हो, उसका जीवन पशु के समान जिसके अंदर विवेक नहीं है। इस अध्यात्म विद्या के ज्ञान को विवेक कहते हैं, संसारी ज्ञान को विवेक नहीं कहते। इस अध्यात्म विद्या का जिसको ज्ञान है, क्लैरिटी है, ये कहा था कि इसके अंदर विवेक है, इसके अंदर सतबुद्धि है। तो ये सतबुद्धि जब आपके अंदर आती है तो फिर आप ये शिकायत करोगे नहीं कि सब कुछ समझते बूझते मैं इस अध्यात्म मार्ग पर चल नहीं पाता। ये चल आप तभी नहीं पाते हो जब आपको पता ही नहीं है कि मेरे कर्म का नतीजा क्या निकलने वाला है। और ये कर्म गति, ये कर्म फल, ये यहां रह नहीं जाएगा, ये मैं संग पोटली बांध के ले जाऊंगा। वो मेरा जो मन है ना, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सारा कर्म फल इकट्ठा हो जाता है, सारी मेरी आदतें इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। एक स्थूल शरीर है जो यहां जला दिया जाता है, एक सूक्ष्म शरीर है जो जीव के संग ही रहता है। इसको देह को जला दोगे, मन नहीं जलेगा आपका, मन वैसे का वैसे। तो मैंने अपने मन का शोधन करना है। महा जी कहते थे कि तन का शोधन तो इतना ही है कि एक बाल्टी पानी से स्नान कर लो, हो गया शुद्ध। इस तन को क्या शुद्ध करोगे, तो ये तो मल मूत्र का थैला है, हमेशा ही भरा रहेगा इसमें, शोधन करने के बाद ही भरा रहेगा। अरे शुद्ध करने की चीज तो मन है। सारी जिंदगी तुमने अपने मन को शुद्ध करना था, वो तो समाज ने सिखाया नहीं मन कैसे शुद्ध होता है। कोई साइंस ही नहीं है दुनिया में, बनी नहीं कोई साइंस। तो मन को शुद्ध करने की जो साइंस है उसका नाम है अध्यात्म विद्या। इसलिए इसको अमृत विद्या कहा जाता है। अरे मेरे परिवार में ही चार लोग हैं, एक माँ है जो सबकी सेवा करती है, सब लोग कैसा प्यार करते हैं उसे, प्रेम उसे कब मिलता है, जब उसके अंदर सबके प्रति प्रेम भाव होता है तो उसको प्रेम मिलता है। चाहता तो हूं मैं प्रेम, सब मुझे प्रेम करें, और मेरे काम ये मन ये करता है कि सब लोग मेरे लिए करते रहे, सब प्रेम भी दे और मेरे लिए करते भी रहे। तो ऐसी मूर्खता की सोच हमारी बनी रहती है संसार। तो ये जो मार्ग है अध्यात्म का, ये ऐसा मार्ग है कि सब कुछ होते हुए तेरी किसी में आसक्ति नहीं रहती। इतना जो प्रिय शरीर तेरा अपना है ना, इसमें भी तेरी आसक्ति नहीं रहती। और केवल निराशक्ति नहीं रहता, एक दूसरी चीज पैदा होती है कि जो कुछ भी इसके पास है, इसका मन करता है मैं किसी दे दूं किसी को, जो कुछ भी इसके पास है, कोई भी गुण है इसके पास, कोई भी वस्तु है, इसका मन करता है मैं कि ये मेरे किसी के काम आया तो अच्छी बात है। क्योंकि इसकी नीड कोई रहती नहीं। नीड मनुष्य क्या है, तन पे दो कपड़े, दिन में दो रोटी चार रोटी, बस नीड तो यही। नींद आएगी तो मजदूर भी कहना ही सो जाता है, ये भी सो जाएगा कहना ही। ऐसा को कोई देखा है नींद आ रही हो जगता रहा, वो मजदूर देखो पत्थरों पे लेट रहे तो सो जाते हैं और गहरी नींद में सोते। नींद तो इसकी बस यही है। तो ये ईश्वर के मार्ग पे चलने वाले हैं, उनकी नींद कितनी कम हो जाती है आपकी कल्पना ही नहीं कर सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते, यदि आज कल्पना करने लग जाओगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए वो देकर खुश होता है, वो देकर खुश होता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा बताओ। महाजी किसी कुछ देते थे क्या, महाजी के पास कोई था देने को कुछ भी? लेकिन सारे लोग उनके पास से हटना ही नहीं चाहते थे। यहां केलाघाट कहां जंगल, जंगली जानवर अभी भी आ जाते हैं यहां पर केलाघाट। तो उस समय क्या हाल होगा, यहां पर दिन में टाइगर्स वगैरह की आवाजें सुन लीजिए आप, दिन में ये हाल था। तो उस काल में 1948 में, 1953 में, आखिरी टाइम तो 1953 में माजी रहा, देहरादून से डॉक्टर्स हमिनी और आर्किटेक्ट कई प्रेमी वहां पे थे महाराजी के शिष्य समय, वो वहां देहरादून से 14 किलोमीटर यहाँ जंगल में नदी के किनारे टेंट में महाराजी रहते थे। वहां रात को तो टेंट के बाहर ही रहते थे वो समाधि में। तो यहां जंगल में आकर भी वो प्रेमी महाराजी के पास से जाना नहीं चाहते थे। महाराजी कहते थे प्रेमी जाओ, संसार के काम भी करने हैं, तो कई बार लेट हो जाती थी तो टेंट में ही सो जाते थे ट्रेन। तो क्या था महाराज जी के पास भाई? तो ये तो प्रेम ही जानते हैं, वो प्रेम की खान थे, वो कहते हैं वो तो प्रेम की खान थे। ऐसा प्रेम तो कोई तीन काल कर ही नहीं सकता जैसा गुरु ने प्रेम किया। अब बताओ ये वस्तुएं देने से प्रेम होता है क्या? प्रेम चीज ही कोई और दूसरी चीज है, वो तो आध्यात्मिक प्रेम क्या था हम जानते नहीं इस बात को। इसलिए ईश्वर को प्रेम रूप कहा जाता है, जिसके अंदर वो ईश्वर प्रकट है वो वास्तव में प्रेम रूप होता है। सारे जीव उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। तो ये कहानी ईश्वर कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। जब ये विज्ञान आदमी अध्यात्म विज्ञान सीखता है और उसके साथ ये पांच नियम जब पालन करता है, ये सब राज समझ में आता है। गीता ये क्यों कह रही है कि कर्मण्येव वात्कारस्ते मा फलेषु कदाचित्। तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार हो गए, फल में कदापि नहीं। अधिकार क्यों कह रही है गीता? क्योंकि कर्म जो है प्रारब्ध से बंधा हुआ है। तेरे देह से जो कर्म होने हैं वो जन्म लेते ही डिसाइड हो चुके हैं, वो सारे कर्म तुझको करने पड़ेंगे। जिस प्रकार अर्जुन को ना चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ा और कृष्ण ने उसको दिखा दिया कि देख ये युद्ध तो मैंने पहले ही कर दिया, तू करने वाला कोई नहीं है, बस इसको तू मेरे हुक्म में कर, अपनी इच्छा करके मत कर, ये समझ ले कि कृष्ण का हुक्म पालन कर रहा है। वासना करके मत कर, तू इच्छा पूर्ति के लिए युद्ध मत कर, तू कर्तव्य समझ के युद्ध कर। तो इतना भयंकर युद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति हुई अर्जुन को। तो कर्म का अधिकार यहां है, ये है कर्म का अधिकार। प्रारंभ कर्म है, देह ने करना है, इसके लिए पैदा हुई है, इसके लिए योग्यता दी गई है इसको। अर्जुन को सारी योग्यता दी गई, नहीं दी गई? गुरु दिया गया द्रोणाचार्य जैसा, राजघराने में पैदा किया गया उसको, समझ नहीं। फिर उसके दुश्मन भी तैयार किए गए, सब कुछ किया गया, तभी तो युद्ध हुआ। वो सारी परिस्थितियां ईश्वर ने आपके लिए निर्माण करनी है। वो तो इसीलिए कह रहे हैं वो कर्मण्येव वात्कारस्ते, तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार हो, कार्य के कारण करो। लेकिन मनुष्य जन्म लिया है, तुझे दुख से मुक्त भी तो होना है, दुख से तुझे मुक्त भी तो होना है। और दुख कहां पर है? कर्म में दुख नहीं है, दुख फल के अंदर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मां फले शुकदाच में, फल में तेरा अधिकार अर्थात तेरी डिजायर, तेरा मन कदापि ना हो। तो केवल कर्म करने वाला हो, फल में तेरी आसक्ति ना हो। ऐसे व्यक्ति का प्रेम ईश्वर में होता है, क्योंकि वो ईश्वर के लिए जीता है। जो कर्म फल के लिए नहीं जी रहा है वो किसके लिए जिएगा? वो ईश्वर के लिए जीता है। ईश्वर में जो प्रेम है, ईश्वर में जो आनंद है, ईश्वर में जो चैन है, वो दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है। इसलिए वाणी कह रही है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसी। सारी मन की बेचैनी हर लेगा प्रभु का सिमरन। इसीलिए ये विज्ञान जब समझ में आता है तब जाके ये पता लगता है कि ये गुरु क्यों पांच नियम पालन करने की बात कर रहा है, कैसे मुझे इस संसार की दलदल से निकालना है। तो इच्छा करके आप पांच नियम का पालन करते हो, मजबूरी करके नहीं करते हो, फिर इच्छा करके पांच नियम का पालन करते, इसमें खुश होते हो आप कि प्रभु ने मुझे बचा लिया, गुरु ने मुझे बचा लिया, संसार के भोग विलास की जगह ये पांच नियम दे दिए, मेरा जीवन सफल हो गया। तो इसलिए ये विज्ञान समझने की चीज है, इसको जो समझोगे तो ये बातें खुद ही हवा हो जाएंगी। ओम
एक जिज्ञासा थी जी,
अब टाइम बहुत हो गया, कल कर लेंगे।